السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آپنے کبھی سوچا کہ کیا بات ہے کہ اور لوگ نیکیوں میں اتنے آگے بڑھ رہے ہیں اور ذوق اور شوق سے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم ارادہ کرتے ہیں مگر ہم سے عمل نہیں ہو پاتا؟ کیا بات ہے کہ ہم عمل میں پیچھے رہ رہے ہیں، نیکی میں پیچھے رہ رہے ہیں؟ یہ بات ہمیں معلوم بھی ہو رہی ہے، ستا بھی رہی ہے، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا. کیا بات ہے کہ لوگ بھاگ بھاگ کے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا جانے کا؟ کیا بات ہے ایسی کہ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو ہمیں لگتا کہ اتنی لمبی پڑھا دی، اور ہم تھک جاتے ہیں اس میں، جبکہ ہم دوستوں کے ساتھ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے اتنی دیر باتیں کرتے رہتے ہیں، گھنٹوں لگ جاتے ہیں اور ہم اس میں نہیں تھکتے؟ کیا بات ہے ایسی کہ جب ہم کوئی دین کی مجلس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ بس جلدی سے ختم ہو جائے اور ہم گھر جائیں اور گھر جا کے اپنے کام کاج کریں. کام کاج کرنے میں ہمیں دقت نہیں ہوتی مگر اس مجلس میں بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے. کیا بات ہے کہ ہم تھوڑا سا قرآن پڑھ کے ہی تھک جاتے ہیں، لیکن جب ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو گھنٹوں شاپنگ کرتے رہتے ہیں، آدھا دن گزر جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وقت کہاں گیا. اور ادھر یہ حال ہے کہ ہم صفحے گنتے رہتے ہیں کب سپارہ مکمل ہوگا. تو کوئی تو وجہ ہوگی. جب ہم کہیں سنتے ہیں کہ پہلے لوگ اتنا قرآن پڑھ لیتے تھے، اتنی نمازیں پڑھ لیتے تھے، اتنا کچھ تسبیحات میں کر لیتے تھے، وہ ہم سے ہوتا ہی نہیں، وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم نیکی کے کاموں میں اتنا تھک جاتے ہیں؟ تو آج اس کے اوپر ذرا غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی آج اپنا جائزہ لیں گے اس میں، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اگنور کی جا سکے. دیکھیں، ہمارے اگر سینے میں درد ہو تو ہم فوراً کارڈیالوجسٹ کے پاس بھاگتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. اگر ہمارا نیکیوں میں دل نہیں لگ رہا تو پھر بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ تو مسئلہ ہوا ہے، کوئی تو بیماری ہے. کھانا نہ ہضم ہو رہا ہو تو تب ہم ڈاکٹر سے دوا لینے جاتے ہیں، لیکن نیکی میں پیچھے رہنے کے اوپر ہمیں کیا احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے جس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہے، ہمیں بھاگنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں؟ پہلے تو یاد رکھیے کہ انسان کے جسم میں ایک آرگن ایسا ہے جو بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ دل ہے. اگر یہ دل درست ہو جائے سارے اعضاء درست ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. تو مینلی اس کا مطلب پرابلم دل میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کو ہی تو دیکھتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کس کا گھر کتنا بڑا ہے، کس کا بزنس کتنا فلرش کر رہا ہے، یا کون کتنی حسین ہے، کون کتنا ہینڈسم ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، یہ تو اس نے خود عطا کیا. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. کس دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے، کس دل میں نیکی کے لیے رغبت ہے، اور کون سا دل ایسا ہے جس میں سرکشی ہے، نافرمانی ہے، شرک ہے، یا گناہوں کی طرف میلان ہے؟ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے، کون کتنے عمل کر رہا ہے، کون نمازیں پڑھنے میں کتنا بھاگ رہا ہے، کون روزے رکھنے میں کتنی محنت کر رہا ہے، کون کیا کرتا ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. تو لہٰذا دل کو اللہ نے دیکھنا ہے. अगर ये दिल बिगड़ गया तो फिर सारे काम ही खराब हो जाते हैं। ना ये आंखें सही काम करती हैं, क्योंकि आंखें फिर वो देखना पसंद करती हैं जो हराम है। ना कान सही काम करते हैं, क्योंकि कानों से वो सुनना अच्छा लगता है जो जायज नहीं है। अगर दिल खराब है तो जुबान वो बोलना चाहती है जिस बोलने में खैर नहीं है, जो हराम बातें हैं। तो प्रॉब्लम सारा का सारा दिल का होता है। इसका मतलब है दिल में कुछ मसला आ गया। वो मसला क्या होता है कि दिल सख्त हो जाता है जब भी नेकी में दिल नहीं लगता। बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बहुत सारे इनामात किए, मगर उनके दिल सख्त हो गए। सख्त दिलों की बहुत मुज़म्मत कुरानी करीम में आई है। जब दिल सख्त हो जाए तो फिर नेकी के काम में जरा भी मज़ा नहीं आता, लज्जत नहीं लगते वो काम, उनमें कुछ मिलता नहीं है ऐसा कि दिल का सकून बने। सूरह जुमर में अल्लाह ताला ने फरमाया, हलाकत है तबाही है, वैल का लफ्ज आया, उन लोगों के लिए जिनके दिल सख्त हो गए। तो ये कोई छोटी बात नहीं है दिल का सख्त हो जाना। हम दिल लिए फिरते रहे और वो सख्त हुए में, और हम आराम से बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, अल्लाह ताला देख रहा है। बाकी लोग आपकी सूरत देखते होंगे, बाकी लोग आपके कपड़े, आपकी ज्वेलरी, या मर्द हैं तो वो दूसरों के बिजनेसेस, उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनके बड़े बड़े घर या गाड़ियां देखते होंगे, लेकिन अल्लाह ताला दिल देखता है। और दिल ही अगर पत्थर लेके हम फिर रहे हैं, दिल ही अगर सख्त इतने हैं, तो सोचें कि जिस चीज पे अल्लाह ताला की नजर है वो ही खराब हो गई, तो फिर हम अल्लाह ताला को कैसे राजी करेंगे, क्या करेंगे हम। तो लेट्स सी के हमारे अंदर तो वो सिम्टम्स नहीं है जो दिल की सख्ती के बारे में होते हैं। तो इसकी कुछ निशानियां होती हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं। पहले तो उनको उनके जरिए डायग्नोज किया जाए, उनके ऊपर गौर किया जाए और देखा जाए कि क्या मैं इसमें फॉल करती हूँ। ये सारे सिम्टम्स भी किसी में हो सकते हैं और किसी में इसमें से दो चार भी हो सकते हैं। डिपेंड्स कि किसका दिल कितना सख्त है। देखिए ना, कुछ चीजें बहुत सख्त होती हैं, जैसे लोहा है या जैसे कोई चट्टान है। कुछ कम सख्त होती हैं, होती तो वो भी सख्त है लेकिन इतनी सख्त नहीं होती। मसलन लकड़ी है, वो तोड़ी भी जा सकती है, सख्त है लेकिन इतनी सख्त नहीं है। जमीन सख्त होती है लेकिन जमीन नरम भी हो जाती है। तो कुछ चीजें बहुत सख्त होंगी, कोई दिल बहुत सख्त होंगे, कुछ थोड़े से अभी कम होंगे। डिपेंडिंग ऑन कि किसमें सिम्टम्स कितने हैं, उसके मुताबिक आप फैसला कर सकते हैं कि दिल कितना सख्त हुआ है। तो पहली निशानी दिल की सख्ती की यही है, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, कि नेकी से इंसान जान छुड़ाता है। अजान होती है तो दिल तंग होने लगता है कि हाय फिर नमाज का टाइम आ गया। रोजा इतना भारी लगता है कि हाय गर्मियों के रोजे कितने मुश्किल हैं। सदका देना हो, कोई पूछ ले, कोई मांग ले कुछ, तो ऐसे लगता है कि जान अटक गई। हाँ, जुमरे का कोई शौक नहीं, तिलावत कुरान बोर लगती है। तो नेकियों में इंसान का जी नहीं लगता, ये पहली निशानी है कि दिल सख्त हो रहा है। दूसरी निशानी क्या? कुराने करीम की आयात पढ़ी जाती हूं लेकिन इंसान पे कोई असर ही ना हो, इंसान टस से मस ना हो। अजाब की आयतें आ रही, कयामत का जिक्र आ रहा, मसन अजाब का, कौमों पे अजाब का जिक्र आ रहा, इस तरह के कई तस्करे हो रहे हैं, और दिल कहे कि कब ये खत्म होगा, क्या मुश्किल है, किधर फंस गए, इधर उधर देख रहे हैं, टॉपिक तो चेंज हो जाए। तो जान पे बनी हुई है अगर कि ये सुनना पड़ रहा है, दिल नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है कि दिल सख्त हो रहा है। अगर ये कुरान की आयात कानों पे बोझ लग रही है ना, तो देर इज अ बिग प्रॉब्लम। सहाबा कराम को तो आखरत का जिक्र इतना पसंद आता था, वो तो एक दूसरे को कहते थे कि हमें आखरत की याद कराओ। और कुरान जब पढ़ा जाता था तो उनका ईमान बढ़ जाता था। आप देखें कि कुरान करीम में सातवां पारा आप शुरू करें, ईसाइयों की बात वहां पे आई है कि उन्होंने कुरान की आयात सुनी तो क्या हुआ, उनकी आंखें बहने लगी। तो उनके दिल नरम थे ना, तो उनकी आंखें बहने लगी। और जब दिल सख्त होते हैं तो इसकी एक निशानी ये है कि आंखें जामिद हो जाती हैं। इब्ने कय्यम फरमाते हैं, जब आदमी का दिल सख्त हो जाता है तो आंखों में कहत पड़ जाता है, यानी आंखें आंसू नहीं बहाती, ना कुरान सुन के रोना आता है, ना आखरत की बातें सुन के रोना आता है, ना अल्लाह ताला के जिक्र पे रोना आता है, ना कोई अजाब की बात, ना जहन्नुम की बात, इस चीज को कोई असर ही नहीं होता, बल्कि उल्टा दिल उचाट सा रहता है कि क्या मुश्किल है। जबकि सच्चे जो मोमिन होते हैं उनके दिल दहल जाते हैं, अल्लाह ताला का कलाम उन पे असर करता है। तो आप देख लें कि काफिर जो थे मक्का में, कितने बड़े बड़े काफिर जो के फिर इसी कुरान से वो ईमान लेकर आए और सहाबा कराम बने, रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन्ह, अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो अल्लाह से राजी हुए। इसलिए कि उनके दिल ऐसे नहीं थे कि सख्त हो चुके हों, उनके दिलों पे असर हुआ। नेक्स्ट निशानी इसकी ये, अब आप खुद साथ साथ जायजा लेते रहें कि अल्लाह के जिक्र से इंसान गाफिल हो, ना तो कोई तस्बीहात करे, ना कुरान पढ़े, ना अजकार कोई करे, तो ये भी पता चलता है कि दिल सख्त हो गया। हदीस में आता है वो जो मुसलसल अल्लाह ताला का जिक्र करता है वो दिल जिंदा है, और जो अल्लाह का जिक्र ना करे वो मुर्दा दिल है। इसका मतलब दिल अंदर से मर गया है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो ये है कि गुनाह के काम और हराम काम सामने हो रहे हैं और कोई फर्क ही ना पड़े, कोई नागवारी ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दिल में तंगी महसूस ना हो कि ये क्या हो रहा है मेरे सामने, मैं इस महफिल से जल्दी निकल जाऊं, मेरा यहां दिल नहीं लग रहा, मुझे परेशानी शुरू हो गई है, दिल में एक बेचैनी सी आने लगती है कि ये क्या हराम काम हो रहे हैं। अगर ऐसी परेशानी नहीं होती ना दिल में तो दिल सख्त हो चुका है, अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही है ना, तो दिल बेचैन हो रहा है, ना दिल में कोई गुस्सा आ रहा है, ना कोई टेंशन हो रही है, बस दिल सख्त हो गया। अपने सामने बेनमाजियों को देख रहे हैं, बेपर्द औरतों को देख रहे हैं, हराम लोग खा रहे हैं वो देख रहे हैं, बेहयाइयों के काम होते देख रहे हैं, कोई मसला ही नहीं, कोई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे मुझे अपनी जॉब की टेंशन होती है, जैसे घर की टेंशन होती है, जैसे कहीं जाना हो अपने कपड़ों की टेंशन होती है, इस तरह की कोई टेंशन भी गुनाहों पे नहीं है। लोग गुनाह कर रहे हैं, इट्स ओके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हाल ये था कि अल्लाह ताला को तसल्लियां देनी पड़ी कि आप इतनी ज्यादा टेंशन लेते थे लोगों के गुनाहों की वजह से, उनके शिर्क की वजह से, हमें कोई फर्क ना पड़े। हम किसी ऐसी जगह पे गए हुए हैं या ऐसे लोगों में रहते हैं तो मना करना तो दूर की बात, हमें बुरा ही नहीं लगता। तो ये दिल की सख्ती की अलामत है। अगली निशानी या सिम्टम क्या है कि जिंदगी में परेशानियां आए, गम आए, मगर फिर भी इंसान अल्लाह की तरफ रुजू ना करे, दुआएं ना करे, ना तौबा करे, तो दिल सख्त हो गया। अल्लाह ताला तो सख्तियों में मुब्तला ही इसलिए करता है लोगों को कि लोग अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं। ये सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने फरमाया है और अल्लाह ताला का गिला है वहां पे कि क्यों नहीं लोग रुजू करते अल्लाह की तरफ। अल्लाह ताला ये मुसीबतें इसलिए भेजता है कि आ जाओ मेरी तरफ, होश संभालो, ये वेकअप कॉल्स होती हैं। और कितनी भी आफतें आ जाएं, जलजले आ जाएं, तूफान आ जाएं, तबाहियां हो रही हैं, जिंदगी में मसले आ रहे हैं, बेचैनियां हैं, परेशानियां आ रही हैं, लेकिन अगर फिर भी अल्लाह के आगे नहीं रोते और ये नहीं कहते कि अल्लाह मैं ही गुनाहगार हूं, अरे अल्लाह ताला ये मेरा ही कसूर है, और अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वाला है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता, उसने मुझ पे जुल्म नहीं किया, ये मेरे अपने गुनाहों का नतीजा है। अगर इंसान यही नहीं कहता, अगर इंसान अपने गुनाहों की तरफ फिर भी नहीं देखता, उनसे तौबा फिर भी नहीं करता, अल्लाह ताला के आगे फिर भी नहीं गिड़गिड़ाता, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब दिल सख्त हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से आती हैं, तो लिहाजा ये भी एक चीज ऐसी है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि दिल सख्त हो रहा है। इसी तरह वाज और नसीहत का जब असर नहीं होता, जब कोई कोई बात कहता है, कोई बात नसीहत की करता है, तो ऐसे ही है जैसे चट्टान के ऊपर बारिश बरसती है तो पानी बह जाता है और पत्थर वहीं का वहीं रहता है। इसी तरह किसी का वाज सुन लें या किसी हमदर्द ने, खैरख्वाह ने कोई नसीहत की, तो बस दाएं बाएं देख के उठ के चले गए और वो इंसान सख्त जहर लगने लगा, बुरा लगने लगा, बजाय इसके कि ये सोचते कि इसने मेरे साथ खैरख्वाही की है, इंसान उसी को बुरा समझने लगता है। ऐसे ही जैसे कि आप आईना देखें और उसमें आपको अपने कोई दाग धब्बे नजर आए तो आप आईने को ही तोड़ दें, यही हाल इंसान को होता है। इसी तरह जब दिल में शहवात, ख्वाहिशात की बीमारी लग जाती है, इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागने लगता है, तब भी दिल सख्त हो जाता है। और ये बीमारी है कि फिर इसके बाद अच्छे खाने भी उसके ऊपर असर नहीं करते। जो बीमार होता है ना, आप देखें कि उसको अच्छा खाना भी देंगे, प्योर खाना भी देंगे, आप देसी घी दे देंगे, वो उसे और बीमार हो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी, वो पहले से बीमार है। इसी तरह एक दिल की सख्ती वाले को आप नसीहत भी करेंगे ना, तो वो नसीहत एक अच्छी चीज है, लेकिन वो भी उसको एक कड़वी गोली लगेगी, उसको बुरी लगेगी, उसको वो भी सूट नहीं करेगी। तो ये कुछ निशानियां हैं, कुछ अलामात हैं, कुछ सिम्टम्स हैं दिल की सख्ती के। और आज का दिन मैं आपको देती हूं कि आप इनके ऊपर गौर कीजिए और देखिए, जांचिए अपने दिल को कि कहीं मेरा दिल सख्त तो नहीं हो गया, और अगर ऐसा है तो फिर इसका इलाज कैसे किया जाए, इसके असबाब क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह हम कल देखेंगे और इसको देखेंगे कि हम किस तरह इससे निकल सकते हैं। आज आपके सामने जो जिक्र मैं रखना चाहती हूँ, ये वो अजीम जिक्र है, वो बड़ा जिक्र है जो शैतान को थका देता है, थका मारता है, जो शैतान की कमर को तोड़ के रख देता है, और जिस पे गारंटी है कि ये बंदा जरूर जन्नत में दाखिल हो जाएगा, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र। ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र इतना बड़ा जिक्र है, हो सकता है हम इसको इतनी बड़ी बात ना समझते हो, मगर ये इतना बड़ा जिक्र है इसलिए क्योंकि अगर इंसान अपने गुनाहों की वजह से जहन्नुम में चला भी जाता है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा इसको वहां से निकालवा देगा। मगर जो आज सोचने की बात है वो ये है कि ला इलाहा कहने वाले भी तीन किस्मों के होते हैं। पहली किस्म वो है जिनको समझ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है, वो जानते हैं कि ला किसको कहते हैं, इलाह किसको कहते हैं, इल्ला क्या चीज है और अल्लाह ताला कौन है। यही लोग कामयाब लोग हैं, यही लोग हैं जो अगर जहन्नुम में चले भी गए तो जन्नत में जाएंगे, जो समझते हैं इसको, जो जानते हैं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है, इस चीज का यकीन है मुझे, और गैर अल्लाह के हाथ में कुछ नहीं, इसका यकीन है मुझे। तो यही है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको समझते हूँ, ये पहली किस्म के लोग हैं। दूसरी किस्म के लोग वो हैं जिन्होंने कलमा तो पढ़ लिया है मगर उनको पता ही नहीं है कि वो पढ़ क्या रहे हैं, वो जानते ही नहीं है, बस उनको सिखा दिया बस किसी ने ये कलमा, ऐसे ही है जैसे तोते को रटा दिया। हालांकि ये इस कायनात की सबसे बड़ी गवाही है जो आप देते हैं जिस वक्त आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सबसे बड़ी गवाही है। आप एक गवाही दे रहे हैं, आप बताएं कि आप गवाही कैसे दे सकते हैं जिस चीज का आपको इल्म ही ना हो, आपको पता ही नहीं है, आपको किसी कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया जाए, आपको उस बात का ही नहीं पता, तो आप किस चीज की गवाही देंगे। और हमारा भी आज ये हाल हो जाता है कि हमें पता ही नहीं है हम क्या कलमा पढ़ रहे हैं और हम उसकी गवाही दे रहे हैं। हालांकि इसका जुबान से भी इकरार करना है, दिल में भी उसका इतराफ होना चाहिए और आजाज में भी अमल होना चाहिए, तब गवाही पूरी होती है। नहीं तो लीस्ट ये है कि कम अज कम समझ तो हो कि ये है क्या, तभी ये जहन्नुम से निकलवाने वाला होगा। और अगर समझ ही नहीं है तो यकीन किस चीज का है, क्योंकि हमें कुरान हदीस के नसूस से ये पता चलता है कि जिसके दिल में यकीन हो इस कलमे किस का, तो यकीन किस चीज का होगा जिसके बारे में फहम ही ना हो। यकीन कैसे आ सकता है जब पता ही नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं। इसी तरह हमें हदीस कहती है जिसने सच्चाई के साथ बोला हो ये कलमा, सच्चाई के साथ कैसे बोलेंगे जब जानते ही नहीं कि क्या क्या रहे हैं। फिर हदीस में आता है इखलास के साथ जिसने बोला हो कलमा, तो इखलास किस चीज का इखलास, हम तो जानते ही नहीं ये अल्फाज हैं क्या, हम तो जानते ही नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या। तो ये सोचें कि ये तो वो कलमा है जो के मीजान के एक पलड़े में अगर सातों आसमान और जमीन और जो कुछ इनमें है सब रख दिया जाए, और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा रख दिया जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह ज्यादा भारी होगा। इतना वजनी है ये कलमा, आखिर ये जहन्नुम से ऐसे ही तो नहीं निकलवा देगा, ये इतना वजनी है। और जैसे सुफियान सौरी ने फरमाया कि इब्लीस की कमर तोड़ देने वाला है, क्या मतलब है कमर तोड़ने का, यानी इब्लीस तो बिल्कुल झुंझला जाता है कि ये क्या हो गया, मैंने तो इस बंदे को अपने रास्ते पे लगाया था और ये तो जहन्नुम से निकल जाएगा, ये तो मेरे हाथ से चला गया, उसकी सारी मेहनत गारत हो जाती जब इंसान ये कलमा समझ के पढ़ता है। तो इतना बड़ा ये कलमा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन ये तब बड़ा बनता है जब इंसान को समझ होती है कि मैं कह क्या रहा हूं, मैं अपने मुंह से अदा क्या कर रहा हूं, और समझ के बगैर माना मालूम हुए बगैर ये कलमा बस जुबान से ऐसे जैसे किसी ने रटा दिया हो और ऐसे बोलते जाना, ये फायदा नहीं देगा। ये तो तोते को भी रटाया जा सकता है। तो ये जब आप समझ के पढ़े तब इंसान को कितना फायदा दे सकता है ये कलमा। फिर तीसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो ये कलमा पढ़ते भी हैं मगर अमल में शिर्क भी करते रहते हैं, उनका अमल इस कलमे के खिलाफ होता है, इसलिए कि शिर्क और तौहीद दो अलग अलग रास्ते हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट रास्ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान कलमा भी पढ़े और साथ साथ शिर्क भी करता जाए। अगर वो शिर्क कर रहा है तो फिर उसको उसके शरीकों के हवाले ही कर दिया जाएगा जिन पे उसने भरोसा किया, तो ऐसों का कलमा पढ़ना कोई फायदा नहीं देगा। तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह करें कहें आप जुबान से, तो तब आपको ये इसका यकीन होना चाहिए कि कोई इलाह नहीं है, पहले नफी है फिर इल्लल्लाह है। और इसको ऐसे ही पढ़ें जैसे बताया गया है, सिर्फ ला इलाहा कह देना ये भी काफी नहीं, सिर्फ इल्लल्लाह 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 इसकी भी गर्दान लगाए रखना ये दुरुस्त नहीं है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया हम वैसे ही पढ़ेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह ही सिखाया, सिर्फ इल्लल्लाह कह देना नहीं सिखाया, सिर्फ अल्लाह हू करना नहीं सिखाया। ये कोई अजगार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत से साबित नहीं है, लिहाजा वही जिक्र करना चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बता दिया हमें। आखिर क्या उससे बढ़ के भी कोई जिक्र हो सकता है जो नबी अलैहि सलातो व सलाम हमें सिखा जाए, हम उसको छोड़ के खुद अपने ही तौर पे जिक्र बना के बैठ जाए कि मुझे लगता है कि ये वाला जिक्र बहुत अच्छा है, अल्लाह हू करती रहूं सारा दिन। नहीं, मेरे नबी से बढ़ के कोई नहीं जानता कि कौन सा जिक्र हमारे लिए सबसे ज्यादा मुफीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बेहतरीन जिक्र करार दिया ला इलाहा इल्लल्लाह को। और जो मैंने आपको उस दिन से कलमे की तीसरा कलमा भी जिसको कहते हैं सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाह इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, उसमें भी ये ला इलाह इल्लल्लाह आता है। लिहाजा अगर आप उस कलमा को भी पढ़ते जाएं तो आपका ये भी जिक्र हो जाएगा और भी अफजल तरीन अजकार आप कर पाएंगे। और आज की जो दुआ है इतनी अजीम दुआ है, गारंटीड जन्नत की दुआ, गारंटीड, इसलिए कि ये नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखा दी है ये दुआ। और गारंटी क्या चीज़ की है इस दुआ के अंदर, कि इंसान अगर इस दुआ को कर लेता है सुबह को कर लेगा तो शाम तक अगर वो फौत हो जाता है तो उसके लिए जन्नत की गारंटी है, और अगर वो शाम को कर लेता है और सुबह से पहले फौत हो जाता है तो भी उसके लिए जन्नत की गारंटी है। अब आप देखें, जैसे कि कुछ चीजें होती ना, आप कुछ दवाएं लेते हैं, आप उनको लेते हैं सुबह को, तो आपको डॉक्टर ने कहा हुआ है कि आपने सुबह और शाम लेनी है, इसका मतलब है कि उसका असर आप सुबह को लेंगे तो शाम तक उसका असर रहेगा, शाम को लेंगे तो सुबह तक असर रहेगा। इसी तरह ये दुआ भी आपको सुबह को लेंगे तो शाम तक इसकी तासीर रहेगी, और शाम को कहेंगे तो सुबह तक इसकी तासीर रहेगी। लिहाजा आपने सुबह और शाम इस दुआ को करना है, ऐसे नहीं करना कि बस एक दफा पढ़ ली है अब उसके बाद काफी है, अब कई दिन के बाद जब ख्याल आया तो उस वक्त कर ली, तो ये नहीं करना। ठीक है, आपने इस दुआ को याद कर लेना है। आखिर क्या बात है कि हम जिस वक्त हमें टेबल्स याद करने होते हैं, पहाड़े याद करने होते हैं, तो वो भी हम बड़े आराम से याद कर लेते हैं और सारी ज़िंदगी वो याद रहते हैं, और इसी तरह जिस वक्त हमें अल्फाबेट्स याद करने हैं या नंबर्स याद करने हैं, वो भी हम कोई याद तो नहीं करके आए थे, लेकिन हमने जब उनको सीखना शुरू किया तो हमें वो आ गए। तो क्या बात है कि दुआओं के बारे में हम इतने गाफिल रहते हैं कि दुआ को हम नहीं याद करते और कहते हमें याद ही नहीं, लिहाजा छोड़ो इस दुआ को मांगने को, ऐसे नहीं करना चाहिए। बल्कि जो दुआएं मसनून हैं, कुछ जरूरी जरूरी दुआएं हैं, उनको कम से कम जरूर याद कर लीजिए, इसलिए कि ये दुआएं हमने सुबह और शाम पढ़नी है। याद होंगी तो किसी ना कार्ड की मोहताजी होगी, ना किसी चीज फोन पे देखने की मोहताजी होगी, बल्कि इंसान को याद हो तो फौरन से आपने अपनी मेमोरी में से उनको निकाल के और अदा कर दिया। आप लेटे भी हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, आप वुजू से हैं या बगैर वुजू के हैं, किसी भी हालत में आप इन दुआओं को मांग सकते हैं। लिहाजा इन दुआओं को कभी ना छोड़ें, ये दुआएं इंसान के लिए बेहद फायदेमंद हैं। और ये दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलकतनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्तता आऊजु बिका मिन शर्री मा सनअत अबू लक बि निअमतिका अलैया व अबू बि ज़म्बी फ़ग़फिर ली फ़इन्नहु ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। इस दुआ को सैयदुल इस्तिग़फ़ार भी कहते हैं, यानी इस्तिग़फ़ार की दुआओं में सबसे ऊपर टॉप की दुआ ये दुआ है। इस्तिग़फ़ार की जितनी दुआएं हैं उनकी सरदार ये दुआ है, इसलिए इस दुआ को मांगना ना भूलें, क्योंकि इंसान देखें गुनाहों का पुतला है, गुनाह तो इंसान से होते हैं। इस दुआ के अंदर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार मांगी गई है, और आप जब इस नियत के साथ बगैर भूले कभी इस दुआ को मांगें कि अल्लाह ताला मैं मेरी अगर मौत आ जाए तो मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं, इस नियत के साथ मांगें, अल्लाह ताला आपको जन्नत अता करेगा। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कोई बहुत ज़्यादा इबादतें नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वो यानी देर क़याम नहीं कर सकते, लेटे रहते हैं क्योंकि बीमार हैं या बहुत ज़यीफ़ हैं, वो लोग इस दुआ को ज़रूर मांगते रहें। इसी तरह किसी को भी इसकी मौत का नहीं पता है कौन सा वक्त मौत का आ जाए, लिहाजा इंसान को हमेशा इन दुआओं का एहतमाम करते रहना चाहिए, ताकि जब भी कभी जाने का वक्त आए, इंसान को ये ना हो कि मैं, काश मैंने ये दुआ पढ़ी होती, काश मैंने ये दुआ मांगी होती। बहुत सारी चीजें हमें पता होती हैं, लेकिन हम नहीं करते, सिर्फ अपनी सुस्ती और गफलत की वजह से। तो इन दुआओं को छोड़ना नहीं है। आप लोगों को भी अगर इस दुआ की आपके पास नहीं है, तो ये आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, आप इस दुआ को नोट कर लीजिए, इस दुआ का प्रिंट ले लीजिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सब से कबूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।